Om Shanti and good evening to everybody. At the onset, I would request all the dignitaries of the stage to come on the stage. Aap apne sthan grahan kijiye. Shri K.S. Bhandari, IG, Director ISA, Shri P.K. Agarwal, ADG, RPF, New Delhi, Shri Ajay Kashyap, IPS, DG, Home Guards, New Delhi, Adarniya Squadron Leader Ashok Gabaji, Colonel B.C. Sati, may I request all those who are coming on the stage can remove your footwear and then come. Adarniya Shukla Didi Ji, B.K. Deepa, Commodore A. Ghoshal, retired. Aap sab apna sthan grahan kijiye manch ke upar. हमारे मुख्य अतिथि कुछ ही देर में पधारेंगे. हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आई ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज विंग वंस अगेन एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव कम फॉर बोथ द कोर्स ऑन इंस्पिरेशनल लीडरशिप एंड द कोर्स ऑन सेल्फ एम्पावरमेंट. कार्यक्रम की शुरुआत हम दो मिनट साइलेंस में परमात्मा की याद के बाद कार्यक्रम शुरू करेंगे.
खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है. खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित मेहमानों को फूल और बैजों से स्वागत करें। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनें, श्री पीके अग्रवाल, ईडीजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, न्यू दिल्ली। स्क्वाडन लीडर अशोक गावा, रिटायर्ड चेयरपर्सन सिक्योरिटी सर्विसेज विंग। बीके दीपा, सीनियर राजयोगा टीचर फ्रॉम मुंबई। कमोडोर ए घोषाल, रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली। श्री अजय कश्यप, आईपीएस, सॉरी श्री के एस भंडारी, आईजी एंड डायरेक्टर आईएसए सीआरपीएफ। ऐसे तो पूरे वर्ष इस प्रांगण में अनेक अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन साल में एक बार ये जो कार्यक्रम है जिसमें सभी फोर्सेस के लोग पूरे भारत से आते हैं और ये एक सुंदर जो मिलन है सभी फोर्सेस का, इसका बेताबी से इंतजार हमारे हमारे ज्ञान सरोवर निवासियों को भी होता है। तो आप सबके स्वागत के लिए हमारे बीच में मधुरवाणी ग्रुप है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मधुरवाणी ग्रुप को कि वो हम सबके बीच में स्वागत गीत रखे।
राष्ट्र प्रेम संग लाए हैं, राष्ट्र प्रेम संग लाए हैं और प्रभु प्रेम में आए हैं, अरावली के आंगन में आनंद घटा बन छाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं। एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वागत कर लें।
राष्ट्र प्रेम संग लाए हैं और प्रभु प्रेम में आए हैं, अरावली के आंगन में आनंद घटा बन जाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं। राष्ट्र प्रेम संग लाए हैं और प्रभु प्रेम में आए हैं, अरावली के आंगन में आनंद घटा बन छाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं।
आप तालियों के साथ
सेवा में जिनका सर्वस्व समर्पित है, भारत वर्ष की सेवा में जिनका सर्वस्व समर्पित है, ऐसे सेवकों के स्वागत में स्नेह हृदय का अर्पित है, ऐसे सेवकों के स्वागत में स्नेह हृदय का अर्पित है। ज्ञान सरोवर में मनोहर मन के कमल मुस्काए हैं, अरावली के आंगन में आनंद घटा बन जाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं, राष्ट्र प्रेम संग लाए हैं और प्रभु प्रेम में आए हैं, अरावली के आंगन में आनंद घटा बन जाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं। की सभी समस्या का हल है, आध्यात्मिकता में ही आज की सभी समस्या का हल है, राजयोग और पवित्रता से मिलता मन को संबल है, राजयोग और पवित्रता से मिलता मन को संबल है, आत्म सशक्तिकरण से शक्ति शांति सुरक्षा पाए हैं, अरावली के आंगन में आनंद घटा बन जाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं, राष्ट्र प्रेम संग लाए हैं और प्रभु प्रेम में आए हैं, अरावली के आंगन में आनंद घटा बन जाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं।
तालियां कम गूंज रही हैं, आपका स्वागत है।
आए मिलकर साथ चले फैलाएं शांति सद्भावना, सभी सुखी हो सबका भला हो मन की मंगल कामना, आए मिलकर साथ चले फैलाएं शांति सद्भावना, सभी सुखी हो सबका भला हो मन की मंगल कामना, शैल शिखर आबू पर्वत के सादर शीश झुकाए हैं, अरावली के आंगन में आनंद घटा बन जाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं, राष्ट्र प्रेम संग लाए हैं और प्रभु प्रेम में आए हैं, अरावली के आंगन में आनंद घटा बन जाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं।
आपका अपने ही घर में अपनों के द्वारा स्वागत।
आप आए आपका घर ये अपनों की अपनी दुनिया, आप आए आपका घर ये अपनों की अपनी दुनिया, मन में मूल्य महकते हैं सदगुण में सुगंधित है गलियां, मन में मूल्य महकते हैं सदगुण से सुगंधित है गलियां, प्रभु पिता और दादी माँ नैनों से नेह बरसाए हैं, अरावली के आंगन में आनंद घटा बन जाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं, राष्ट्र प्रेम संग लाए हैं और प्रभु प्रेम में आए हैं, अरावली के आंगन में आनंद घटा बन जाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं, हम स्वागत में हर्षाए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का और विशेष हमारे तीन भाई सतीश भाई, बितेंद्रा भाई और गोविंद भाई का। ये सब यही इस मुख्यालय में समर्पित भाई हैं और इस मधुरवाणी ग्रुप की विशेषता यह है कि कोई भी ओकेशन हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई और ओकेशन हो, उस ओकेशन के निमित्त ये बहुत ही सुंदर सुंदर गीत बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर गीत बनाते हैं और गाते हैं। मुझे याद है सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के शुरू के एक कार्यक्रम में बहुत ही एक अच्छी हमारे पास ऑफिसर्स की ऑडियंस आई थी और तब बहुत छोटा ग्रुप होता था, तो एक गीत इन्होंने गाया था, विश्व रक्षक के घर में राष्ट्र रक्षक आए हैं। तो आप सबका पुनः स्वागत है इस दो तीन दिन के कार्यक्रम के लिए। स्वागत की श्रृंखला में आगे मैं इनवाइट करता हूं, हमारे बीच में दिल्ली से पधारी हैं बीके वृंदा बहन, जो वेलकम डांस प्रस्तुत करेंगी। बीके वृंदा बहन,
तन स्वस्थ हो
बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा बहन का, एक बहुत ही सुंदर नृत्य से हम सबका स्वागत किया। हमारे बीच में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की वाइस चेयरपर्सन आदरणीय शुक्ला दीदी भी पधारी हुई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुक्ला दीदी से कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और मैं साथ में ब्रह्मा कुमारी बहनों से भी निवेदन करूंगा कि आदरणीय दीदी का फूलों और बैजों से स्वागत करें। कर्नल सती भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राजयोगिनी बीके शुक्ला दीदी जी, जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और दिल्ली में हरिनगर से आई हैं। कर्नल बीसी सती, आप स्टेशन हेडक्वार्टर माउंट आबू से हैं। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री अजय कश्यप आईपीएस भी पधारे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्मा कुमारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि का भी स्वागत फूलों और बैजों से करें। Giving the welcome address, I would now request Colonel Sati. A few words about Colonel Sati. He was commissioned in the Indian Army in March 1989. In his army career of 30 years in 9th Garhwal Rifle of Garhwal Regiment, he has rendered his services at Jamnagar, Harsi, Hyderabad, Srinagar, Agra, GRC, Assam Rifles, where he became instrumental in organizing stress management cum de-addiction workshops. He is presently posted in the station headquarters Mount Abu, and he is one of the pillars of the security services wing and has been rendering his services right since the security services wing was formed in 2001. Colonel B.C. Sati.
Om Shanti. Good evening. Jai Hind. Aaj ki is sunari ruhani sham mein मैं आप सभी का परमपिता परमात्मा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे अति आदरणीय चेयरपर्सन SSW स्कॉन लीडर अशोक गाबा, वाइस चेयरपर्सन राजयोगिनी बीके शुक्ला दीदी, डायरेक्टर ज्ञान सरोवर बीके प्रभा दीदी एवं समस्त SSW परिवार, एवं समस्त ज्ञान सरोवर परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये जो आज का कार्यक्रम है ये एक ज्वाइंट सेशन के रूप में रखा गया है, जिसमें दो कार्यक्रम की इनॉग्रल सेशन किया जा रहा है। ऑफिसर्स के लिए इट इज द डायलॉग ऑन इंस्पिरेशन लीडरशिप, और जीसीओस के लिए है सेल्फ एम्पावरमेंट। तो दोनों ही प्रोग्राम तीन दिन के हैं। जो जीसीओस का प्रोग्राम है वो कल शुरू हो गया था, और ऑफिसर्स का आज विधिवत उद्घाटन हो रहा है। दोनों प्रोग्राम्स की रूपरेखा इस ढंग से बनी है कि हम सभी अपने अपने फोर्सेस में, मैंने ये देखा है क्योंकि सर्विंग ऑफिसर हूं, सर्विंग सैनिक हूं, कि हम अपना बेस्ट योगदान करते हैं, बट कहीं पे मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक पहलू हमारे इस पर्सनैलिटी में थोड़ा सा ऐड होना अगर हो तो वो सुंदरता को बढ़ाता है, फौजी जीवन की उत्कृष्टता को बढ़ाता है, और वो है द स्पिरिचुअल एंगल। शायद हम सब कुछ जानते हैं आज इस जमीन पे, बट थोड़ा सा ये एंगल जानते हुए थोड़ा अभ्यास कम है। तो ये जो सेशन है तीन दिन का, ये हमें इस तरफ ले जाएगा। और बहुत एक चर्चा होती है फौज में कि हमें मेडिटेशन सिखाइए, स्ट्रेस है, इससे हमारा स्ट्रेस दूर होगा, पर वो मेडिटेशन क्या है, कैसे करें, क्या विधि है, इस तीन दिन में आपको उसकी विधि इस ढंग से समझाई जाएगी कि आपके लिए वो करना सरल हो जाएगा। और मैंने ये देखा है अपने व्यक्तिगत फौजी जीवन में कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप एक सैनिक के रूप में बेहतरीन सेवाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए दे सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सती का। In 1995, Gyan Sarovar Academy was inaugurated. Most of the wings were created in 1995. The creation of Security Services Wing was delayed by 6 years. 2001 mein Security Services Wing ki sthapna hui. Most probably because there was some skepticism ki shayad ek spiritual organization jo shanti sikhati hai aur ek security force jiska karya yudh hai ya ladai hai. शांति और लड़ाई शायद विपरीत चीजें हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते। 2001 में जब से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग बनी, उसके बाद से जो ये फोर्सेस के लिए कार्य कर रही है, तो पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से सेवाएं कर रही है, तो ये एक जो भ्रम था कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक सिक्योरिटी फोर्स के लिए कुछ नहीं कर सकती, ये भ्रम टूट गया। क्योंकि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन शांति सिखाती है, लेकिन शांति भी कौन सी, मन की शांति। मन की शांति या मन को सशक्त करना, ये आज व्यक्ति कोई भी फील्ड में हो उसको जरूरी है, और अगर उसका मन सशक्त है तो वो हर फील्ड में अच्छा ही करेगा, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी उतना ही लागू है। और पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से पूरे भारत से अलग अलग फोर्सेस से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की फैकल्टीज को इन्विटेशन है कि आप आइए और एक दिन का, दो दिन का ये स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कराइए, तो उस पॉपुलैरिटी को देखते हुए मैं समझता हूं कि फोर्सेस में ये जो भ्रम है ये अब नहीं रहा। 2001 से 2019 18 वर्षों में सिक्योरिटी सर्विस विंग की ये जो यात्रा है बहुत ग्रो हुई, इसके पीछे बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की, और ये पूरी जो 18 वर्षों की सेवाएं हैं ये 10 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री में कैद की है, और हम ये 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे और इस जर्नी में चलेंगे कि कैसे 2001 से आज तक सिक्योरिटी सर्विस विंग देश की फोर्सेस के लिए सेवाएं कर रही।
सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण सन 2001 में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत की मिलिट्री, पैरामिलिट्री एवं स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए किया गया, ताकि बढ़ते हुए स्ट्रेस लेवल और सुसाइड्स को कम किया जा सके। इन कार्यक्रमों का संचालन माउंट आबू स्थित अकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर द्वारा होता है। डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा, डीजी सीआरपीएफ ने सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का ऑफिशियल उद्घाटन सन 2002 में किया, और इसमें पहली बार आर्मी व नेवी हेडक्वार्टर्स ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऑफिशियल ड्यूटी पर नॉमिनेट किया। अगले 13 वर्षों में यानी सन 2014 तक अनेक अधिकारियों ने हमारे सुरक्षा प्रभाग के कार्यक्रमों का विभिन्न स्थानों पर आयोजन कराया, जिससे अनेक सीनियर ऑफिसर्स एवं सब ऑफिसर्स को इन कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हुआ। सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार विषयों का चयन किया गया है। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग चैलेंजेस, स्लीप मैनेजमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, मेडिटेशन आदि। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के कार्यक्रमों में भाग लेना व इन कार्यक्रमों द्वारा अधिक से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल को लाभ पहुंचाने में अनेक वरिष्ठ अधिकारियों का योगदान रहा, जैसे जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एडमिरल सुनील लांबा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, श्री प्रसून मुखर्जी, डीजी बीपीआरएनडी, एयर मार्शल आर के धीर, एओसीएनसी स्वैग, श्री के शर्मा, डीजी बीएसएफ, श्री ओपी सिंह, डीजी सीआईएसएफ, श्री ओपी गल्होत्रा, डीजीपी राजस्थान आदि। सन 2014 से सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा विशेष भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए विशाल स्तर पर सेवाओं का आरंभ हुआ। जून 2014 में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को एम्पैनल किया गया श्री डीके पाठक डीजीबीएसएफ द्वारा, क्योंकि उन्होंने कई स्थानों पर हमारे कार्यक्रमों को देखा और सराहा था। बीएसएफ प्रोजेक्ट की शुरुआत मिड जुलाई 2014 को बीएसएफ फ्रंटियर कोरापुट के कार्यक्रम से की गई। बीएसएफ के सभी फ्रंटियर लेवल के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हर बीएसएफ सेक्टर में स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम किए गए। 2017 में दोबारा सिक्योरिटी सर्विसेज विंग ने बीएसएफ के सभी सेक्टर्स में और 2018 में सभी बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर्स में दो दिवसीय तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए। बीएसएफ को देख सीआईएसएफ को भी प्रेरणा आई कि वह भी अपने ट्रेनिंग सेंटर्स एवं ऑपरेशनल यूनिट्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कराएं। 2015-16 में इसकी शुरुआत सीआईएसएफ अकेडमी नीसा हैदराबाद से हुई। अगले तीन वर्षों में 6 ट्रेनिंग सेंटर्स, 8 एयरपोर्ट सेक्टर्स तथा 80 ऑपरेशनल यूनिट्स में दो दिवसीय तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। फील्ड फॉर्मेशन के कार्यक्रम के साथ साथ वर्ष में एक बार माउंट आबू मुख्यालय में सभी फोर्सेज के लिए 3 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। 2015 के एनुअल कॉन्फ्रेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्टेट पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, तिहार जेल जैसे 16 संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स श्री किरेन रिजिजू पधारे। श्री किरेन रिजिजू ने अपने उद्घाटन भाषण में सीपीओज के लिए सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ ट्रेनिंग के प्रति बहुत स्पष्ट मैसेज दिया।
अपना जो सेंट्रल फोर्सेस है अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से, मैं तुरंत जाकर के अपने डिवीजन में सबको कहूंगा कि जैसे अभी हमारा बीएसएफ, सीआईएसएफ कुछ शुरू किए हैं, बाकी ऑफिसर सब यहां आए हुए हैं, सारा फोर्सेस में इसका एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए जो लगातार इस तरह का जो ट्रेनिंग है, इंटरेक्शन है, ये हमारे जितना भी सिक्योरिटी फोर्सेस में है इसका एक प्रैक्टिस, एक रेगुलर वे में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीका अपनाना चाहिए। इसके लिए मैं जाकर के तुरंत अपने अधिकारियों से मैं बात करूंगा।
2016-17 में इंडियन नेवी में ऑफिशियली नेवल हेडक्वार्टर सहित ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कमांड्स में इरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेस एंड एनहेंसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर प्रोग्राम किए गए। 2018 में इंडियन नेवी ने पुनः अपने सभी मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स में तनाव मुक्ति कार्यक्रम करने की स्वीकृति दी। इसके फलस्वरूप अरकोनम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, गोवा, पोरबंदर, ओखा, जामनगर आदि में कार्यक्रम कराए गए। इसके साथ ही 2016 से 2018 में कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर के आदेश अनुसार उनके 16 मुख्य स्थानों जैसे ओखा, मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, गोवा, रामेश्वरम, पारादीप आदि में तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। प्रत्येक वर्ष दिल्ली के निकट स्थित 30 एकड़ में फैला हुआ ओम शांति रिट्रीट सेंटर के सुंदर प्रांगण में सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए दो दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। दिल्ली के निकट होने के कारण अनेक वरिष्ठ अधिकारियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला, जैसे श्री राजेंद्र सिंह, डीजी कोस्ट गार्ड, श्री ओपी सिंह, डीजी सीआईएसएफ, श्री एनआर वासन, डीजी बीपीआरएनडी, वाइस एडमिरल एके चावला, चीफ ऑफ पर्सनल इंडियन नेवी आदि। उत्तर भारत की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा करने वाले आईटीबीपी कर्मियों के लिए श्रीनगर, लेह, लोहितपुर, तेजू, गैंगटॉक, पटना, देहरादून, मसूरी, गुवाहाटी आदि में कार्यक्रम कराए गए। भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली एसएसबी के सभी फ्रंटियर्स लखनऊ, रानीखेत, पटना, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, तेजपुर में सेल्फ एम्पावरमेंट के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ष 2018 में माउंट आबू में आयोजित एनुअल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन डीजी सीआरपीएफ श्री आर भटनागर जी ने किया। इस वर्ष में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के सभी सेक्टर्स में कार्यक्रम कराने का लिया गया। इसके अंतर्गत नवी मुंबई, गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, चंडीगढ़, रामपुर, भुवनेश्वर, मोकामा, नई दिल्ली आदि में कार्यक्रम किए गए। देश के कोने कोने में फैली हुई सुरक्षा बलों को सशक्त करने के लिए एसएसडब्ल्यू की फैकल्टीज सदा प्रतिबद्ध हैं। प्रत्येक वर्ष सभी कार्यक्रमों को करने के लिए एसएसडब्ल्यू फैकल्टीज हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। एसएसडब्ल्यू फैकल्टीज की निष्ठा, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि इन पूरे कार्यक्रमों के लिए कोई फीस नहीं ली गई। राज्य पुलिस बलों के लिए पहली बार 2018-19 में राजस्थान के डीजीपी ओपी गल्होत्रा जी की प्रेरणा से सभी जिला पुलिस मुख्यालयों में तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। भविष्य में दूसरे राज्यों की पुलिस बलों के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम कराने की योजना है। भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा बल इंडियन आर्मी की सेवाएं सन 2001 जब से एसएसडब्ल्यू की स्थापना हुई तब से शुरू हो गई थी। फिर भी 30 दिसंबर 2018 को एसएसडब्ल्यू के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा जब स्वयं जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे मुख्यालय माउंट आबू में शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पधारे। उन्हें एसएसडब्ल्यू द्वारा सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और भारतीय थल सेना में भी तनाव मुक्ति कार्यक्रम करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके फलस्वरूप आर्मी हेडक्वार्टर्स ने भी कमांड को एसएसडब्ल्यू द्वारा कार्यक्रम करने की स्वीकृति दी।
मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं।
अप्रैल 2019 से आर्मी के अनेक स्थानों जैसे बारामूला, अखनूर, जामनगर, अहमदाबाद, बाड़मेर, नसीराबाद आदि में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और 2019-20 में अनेक स्थानों पर भारत के वीर जवानों के लिए कार्यक्रम कराने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2019 में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सबसे शक्तिशाली बल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के सभी हब्स में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें चेन्नई, हैदराबाद, मानेसर, अहमदाबाद में एनएसजी कर्मियों को कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हुआ। सुरक्षा कर्मी अपना कार्य पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर सके इसके लिए उनका परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अनेक स्थानों पर सुरक्षा बलों के साथ साथ उनके परिवारों ने भी भाग लिया। वर्ष 2019 में एसएसडब्ल्यू ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए अजमेर से शुरू की। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आरपीएफ के सभी जोन में स्व सशक्तिकरण कार्यक्रम किए जाएंगे। 2019-20 में विशेष कई सुरक्षा बलों के लिए कार्यक्रम करने की योजना है जिसमें प्रमुख हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, आरपीएफ, एसएसबी, एनडीआरएफ आदि। सुरक्षा बलों के असीम त्याग और बलिदान के लिए हर एक भारतीय कृतज्ञ और ऋणी है। इन वीर जवानों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारा उनके प्रति सच्चा सम्मान और हार्दिक आभार है। जय हिंद।
तो हम सब ने देखा कैसे पिछले 18 वर्षों में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग ने पूरे देश में अनेक फोर्सेस के लिए किस तरह से कार्यक्रम किए और अभी भी कितने सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है। इसके पीछे कई लोगों की अथक सेवा और बलिदान है जिसमें से हमारे चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन हमारे बीच है, हम उनसे भी आगे चलकर सुनेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वी आर वेरी हैप्पी टू हैव श्री के एस भंडारी आईजी एंड डायरेक्टर आईएसए सीआरपीएफ माउंट आबू एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। ए फ्यू वर्ड्स अबाउट द आईजी। श्री के एस भंडारी, डायरेक्टर इंटरनल सिक्योरिटी अकेडमी सीआरपीएफ माउंट आबू, ज्वाइंट सीआरपीएफ एज ए गेजेटेड ऑफिसर इन द ईयर 1984. ही इज एमएससी एलएलबी एंड हैज अंडरगॉन वेरियस कोर्सेस इन सीआरपीएफ एंड आउटसाइड. ही हैज बीन अवार्डेड ए नंबर ऑफ मेडल्स एंड डेकोरेशंस बिकॉज ऑफ हिज सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी एंड हार्डवर्क. प्रोमिनेंट अमॉन्ग दीज आर द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर मेरिटियस सर्विस, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस and numerous DG's commendation discs and certificates. He has a vast and versatile experience of operational assignments as he has served in all operational theatres and also served in the National Security Guard. He is of the view that sensitive administration can solve most of the problems of the public and a leader is successful only when he mentors good leaders. I will request Shri K.S. Bhandari to give his words of greetings. Shri K.S. Bhandari.
Good evening, namaskar, speaker sitting on the dais, audience, members of Brahma Kumari organization, ladies and gentlemen. मैं अभी जब इस venue की तरफ आ रहा था तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि forces, security forces और Brahma Kumariyon में क्या similarity है, इनके जो एम है उनमें क्या सिमिलरिटी है. तो जो फोर्सेज हैं वो भी जो है दे हैव बीन वर्किंग फॉर पीस, ट्रैंक्विलिटी, हैप्पीनेस, और आप भी जो है इन्हीं चीजों के लिए, पीस, ट्रैंक्विलिटी, हैप्पीनेस के लिए ही आप वर्क कर रहे हैं, आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं. लेकिन हमारे तरीके अलग अलग हैं, अभी जो आज तक देखा गया है या जो पिछले कुछ सालों में देखा गया है, हम लोग ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं. आप ये कह सकते हैं कि हम दूसरों को डिसिप्लिन करना चाहते हैं थ्रू लॉ, थ्रू एप्लीकेशन ऑफ लॉ, या जो फोर्स का इस्तेमाल, जब कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पर भी डिस्टर्बेंस होता है तो हमारे अपने तरीके होते हैं. लेकिन Brahma Kumari ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को डिसिप्लिन करके पीस और ट्रैंक्विलिटी लाना चाहती है. लेकिन इसमें एक जो कॉमन पॉइंट है, जो बहुत कॉमन आप में भी दिखाई देता है, हम में भी दिखाई देता है, वो है एम्पावरमेंट. लेकिन फिर अंतर है, हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर को एम्पावर करते हैं, लाइक अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, फोर्स का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, वेपनरी बढ़ती है, हमारी टैक्टिक्स बढ़ती हैं, वेपन बढ़ते हैं. उस पीस को लाने के जो तरीके हैं वो हमारे दूसरे होते हैं. और आप लोग कहते हैं कि आप इंटरनल ट्रेनिंग करिए, आप अपने को खुद को ट्रेन करिए. एम्पावरमेंट है लेकिन उसके अलग अलग तरीके, लेकिन उसका एम एक है, उसका जो हमने अल्टीमेट प्राप्त करना है वो एक है. अब दूसरा ये है कि हमको क्यों जरूरत है, ये जो आपने बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर रही हैं, ये आपने डायलॉग या जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई. आज से 10-15 साल पहले हम कभी ये सोचते भी नहीं थे. हम लोग भी ट्रेनिंग करते थे, रीओरियंटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद को रीओरियंटेशन, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते थे रीओरियंटेशन के, उसमें कभी अपने पे हम लोग या अपने इनसाइट को हम लोग रिट्रेन नहीं करते थे. हम लोग कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर में अपने को रिट्रेन करेंगे, एक सेक्टर से दूसरी जगह जाते हैं, एक इलाके से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम रिट्रेन करते हैं दूसरी चीजों में, फिजिकल चीजों में, या जो अपने अप्रोच में जो है मेंटल अप्रोच को चेंज करके दूसरी चीजों को हम रिट्रेन करते हैं. लेकिन आप कहते हैं कि आप पहले अपने को रिट्रेन करिए. इतना जो जो इस प्रोसेस में हम लोग जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जाते हैं या पीस मेंटेन करने के लिए जाते हैं, तो जो फोर्सेस का जो आदमी है वो हमेशा डिस्टर्ब कंडीशन में रहता है.
हर एक आदमी भी रहता है, हर एक आदमी की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि जो जब पीस मेंटेन करने का मतलब यह है, जब पुलिस भी जो है आप देखते हैं सुबह से शाम तक जो है वो खराब चीजें ही सुनती है, जो कोई इंसिडेंट हो गया, ऑफेंस हो गया, वही सुनता रहता है सुबह। पुलिस का जवान जो बैठता है या जो अधिकारी बैठता है सुबह से शाम तक उसको हमेशा खराब चीजें सुनाई देती है उसको। फोर्सेज वाला भी हमेशा जहां डिस्टर्ब होगा वहां जाएगा, जहां डिस्टर्बेंस होगा वहां जाएगा, या जहां नेचुरल कैलेमिटी होगी अच्छा नहीं दिखाई देगा आपको, बहुत हैप्पी सिचुएशन नहीं होगी वहां जाएंगे। आर्मी के बारे में आप जानते हो, सुबह शाम गोले चलते रहते हैं, आदमी मरते रहते हैं, या इधर मरे या उधर मरे, तो बहुत डिस्टर्ब सिचुएशन में, जो बहुत खराब सिचुएशन में ये काम करते हैं, तो उन खराब सिचुएशन में जब काम करते करते उनका अपना जो इमोशनल जो बैलेंस है वो जरूर खराब होता है, उस पर उतना कंट्रोल नहीं होता, तो उसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है उसको क्योंकि लीडरशिप के ऊपर आपने बोला है कि डायलॉग ऑन इंस्पिरेशनल लीडरशिप, तो लीडर का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए उसको इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं, कि उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसने स्टेप लेना है या डिसीजन लेना है, और इमोशनल रेजिलियंस तभी हो पाएगी, वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर से उसको नहीं होना है, वो तभी होना है जब उसका माइंड या उसका जो खुद अंदर से उसकी इतनी ताकत है कि वो उन इमोशंस को कंट्रोल कर सके और करेक्ट डिसीजन ले सके। अब ये कैसे करना है, इसीलिए शायद आप लोग यहां आए हैं, इस इमोशनल रेजिलियंस को कैसे वापस लेके आना है, इसको कैसे हमने रिस्टोर करना है, वो यहां आपने पढ़ना है या आपने डिस्कस करना है। लेकिन एक चीज मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि इन सब के सेंटर में एक चीज होती है, वो है माइंड और माइंडसेट। आप जानते हैं कि माइंडसेट जो है बनता है कई सारे आपके लाइफ में, आप जब चल रहे होते हैं तो कई सारी आपके एक्सपीरियंस होते हैं, कई सारी अच्छी इंसिडेंट होती हैं, कई सारी बुरी इंसिडेंट होती हैं, उससे आपके माइंडसेट बनता है। तो जैसा मैं कह रहा था डिस्टर्ब सिचुएशन की, मैं इसलिए जिक्र लाया कि जब आप सारी चीजें डिस्टर्ब सिचुएशन आप देखते हैं तो आपका माइंड या माइंडसेट भी आपका डिस्टर्ब होता है। तो इन सारे चीजों के सेंटर में जो माना जाता है माइंडसेट है। माइंडसेट अब क्या है, माइंडसेट आप लोग जानते हैं कि एक जगह पर बैठे, शायद हम लोग यहां पर एक जगह हॉल पर बैठे हुए हैं या एक शहर में बैठ सकते हैं, एक परिवार में बैठ सकते हैं, और हरेक का माइंडसेट अलग अलग होता है। मैं कहीं देख रहा था, मेरे पास कोई एक व्हाट्सएप किसी ने भेजा था कुछ दिन पहले, तो मैं उसमें देख रहा था, वो कहता कि ही वॉज डिफाइनिंग द टाइम, व्हाट इज टाइम, किसी के लिए टाइम बहुत अच्छा हैप्पी सिचुएशन है, ही फील सो गुड, टाइम इज वेरी शॉर्ट, सारा जिंदगी में या सारा संसार में सभी अच्छा ही अच्छा है। सेम वी आर सिटिंग एट सेम प्लेस, अदर दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, टाइम इज वेरी बैड, इज इन प्रॉब्लम, और कहता है टाइम तो बहुत लंबा कट रहा है, बहुत कट नहीं रहा है टाइम, और बहुत खराब टाइम चल रहा है। तीसरा बोर हो रहा है, वो बोला टाइम बहुत लंबा है, टाइम अच्छा नहीं। घड़ी की सुई वही है, वही घड़ी है, सेम घड़ी, उसकी स्पीड एक है, बिल्कुल टाइम इज सेम, कोई उसमें चेंज नहीं है, बट हमारे सोचने के तरीके से, हमारे माइंडसेट से, अलग अलग आदमी के माइंडसेट से वो टाइम अलग अलग उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है। तो बेसिकली द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज द योर माइंडसेट, एंड व्हाट इज माइंडसेट इज टू, यू हैव टू वर्क ऑन योर इनर इमोशंस, यू हैव टू वर्क ऑन योर इनर थॉट्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर फीलिंग्स। आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, फोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने एक ये कॉन्फ्रेंस चलाई है, बहुत सालों से चल रही है, एंड बहुत ज्यादा इसका प्रचार हो रहा है, आप जा रहे हैं। मैं जब श्रीनगर में था तो वहां भी आपकी टीम आकर के हमने वहां बहुत सारे लोगों को इसका फायदा उठाया था वहां पर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोर्सेस, एंड इट इज वेरी वेलकम स्टेप, यू हैव डन इट, एंड फोर्सेज हैज एक्सेप्टेड इट, इट हैज गॉट वाइड एक्सेप्टेबिलिटी इन ऑल द फोर्सेज विच इज सीन इन द वीडियो। एंड आई एम श्योर कि आपके दो तीन दिन जो यहां पर रहेंगे और इसके ऊपर आप काम करेंगे, और जो लीडर्स यहां पर आए हैं या जो भी फोर्सेस के लोग आए हैं, वो वापस जाकर के अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको और आगे बढ़ाएंगे। एंड जो हमारे एक्सट्रीम, जो मैं कह रहा था कि हमारे फिजिकल मेथड्स खुशियां लाने के, और आपके जो इंटरनल मेथड है अपने को सेल्फ डेवलप करके जो मेथड्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं इनमें एक अच्छा समन्वय होगा एंड वील हैव ए वेरी गुड मेथड्स एंड वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द नेशन। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आईजी सर ने बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन किया, और मुझे याद है जब आर्मी चीफ हमारे इधर आए थे तो उन्होंने भी स्टार्ट में सबसे पहले यही कहा था कि आपकी फोर्स और हमारी फोर्स में एक ही चीज कॉमन है कि आप भी शांति के लिए काम कर रहे हो और हम भी शांति के लिए काम कर रहे हैं। सर ने बहुत सारी चीजें बताई, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बताई है, क्योंकि कुछ समय पहले बीपीआरएनडी ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी थी कि फोर्सेस में क्या क्या कारण है स्ट्रेस के और उसका क्या निवारण है। तो स्ट्रेस के कारण तो बहुत सारे बताए, लेकिन उसका निवारण सिर्फ एक लाइन में बताया, और वो था कि अगर व्यक्ति अपना इमोशनल रिजिलियंस बढ़ाता है तो उसको स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, जो सर ने सार रूप में वही पॉइंट को बताया। और इमोशनल रिजिलियंस यानी अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, जिसके लिए हम लोग ये जो कोर्स कर रहे हैं सेल्फ एम्पावरमेंट का, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि कैसे हम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करें तो ऑटोमेटिकली जीवन में जितने स्ट्रेस है वो खत्म हो जाते। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमारे बीच में श्री पी के अग्रवाल एडीजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आए हैं, और ये कोइंसिडेंस है कि सर लास्ट वीक ही हम लोग ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और हमारी टीम वहां गई थी। अजमेर से ये शुरू हुआ था, अजमेर, जयपुर, जोधपुर आदि में प्रोग्राम करके टीम हमारे बीच में आई है, और इस वर्ष विशेष हमें सभी जोन्स में प्रोग्राम करने के लिए कहा गया। मैं कुछ शब्द एडीजी के बारे में बताना चाहूंगा। श्री पी के अग्रवाल, ही क्लियर्ड हिज सिविल सर्विसेज एग्जाम इन 1983, ही ज्वाइंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन अगस्त 1984, ही हैज अंडरगॉन ट्रेनिंग इन मसूरी, लखनऊ एक्सेट्रा, ही हैज बीन पोस्टेड इन 24 प्लेसेस टिल डेट, राइट फ्रॉम कपूरतला इन नॉर्थ टू चेन्नई इन साउथ, फ्रॉम असम इन ईस्ट टू मुंबई इन वेस्ट। ही हैज वॉन सेवरल अवार्ड्स बाय वेरियस डिग्नेटरीज इंक्लूडिंग द रेलवे मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड मेनी मोर। He has been sent to foreign countries like France, USA, etc. by the government of India. He has keen interest in astrology. So, main ADG sir se request karunga ki kindly give your words of inspiration. ADG sir.
Om Shanti. Yahan upasthit sabhi बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। ये बहुत ही खुशी की बात है कि SSW ने इस तरह का एक सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया है, जिससे हमारे सारे सीनियर अधिकारी और JCOs और इंस्पेक्टर्स लाभ उठाएंगे। ट्रेडिशनली भारत में दो चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया, एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ और एक IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। पिछले दिनों में देखा गया कि जो हमारी राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र की सुरक्षा में जो फोर्सेस काम कर रही हैं, रात दिन काम कर रही हैं, वो लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं और इस तनाव की वजह से आपस के संबंध खराब होते हैं, जूनियर सीनियर की बेइज्जती करते हैं, हत्या, आत्महत्या, इस तरह के मामले होते हैं। तो EQ, इमोशनल क्वोशेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, इस तरह की जरूरत महसूस की गई है। यदि मैं कंप्यूटर की भाषा में कहूं तो फोर्सेस में हम लोग हार्डवेयर पर ज्यादा जोर देते हैं, सुबह शाम PT परेड, लेफ्ट राइट गोली, ये सब चीजों पर ज्यादा जोर। पर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। यदि उसमें वायरस घुस जाएगा तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा। SSW को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस योजना पर काम किया है कि राजयोग के माध्यम से और इस तरह के जो मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं उनसे सशक्तिकरण किया जाए, जिससे कि सारी हमारी फोर्सेस के अधिकारी जवान दिमागी रूप से स्टेबल हों, उनका तनाव खत्म हो। देखिए, ये आप सभी जानते हैं कि 1% किसी सिचुएशन के पीछे एक्शन और रिएक्शन दो चीज का हाथ होता है, 1% रिएक्शन, 99% रिएक्शन। तो हम लोग एक्शन को तो नहीं रोक सकते, पर यदि रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल करें तो शायद शांतिपूर्ण तरीके से दिमाग में शांति रखते हुए उसको बेहतर तरीके से हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आगे 4 दिन आपके लिए, आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएंगे, आपके जीवन में एक सुनहरा अध्याय खुलेंगे, जिससे कि आप दिन प्रतिदिन आगे प्रगति करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आगे हमारी सरकार, भारत सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि ट्रेनिंग में इस तरह के प्रोग्राम को एक परमानेंट स्थान दे, ताकि फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा जो मेंटल ट्रेनिंग है ये भी साथ साथ चले। धन्यवाद।
धन्यवाद सर फॉर योर काइंड वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग्स एंड इंस्पिरेशन। भारत में ये परंपरा है कि कोई भी कार्य ज्योति जलाकर करते हैं, क्योंकि लाइट को, लाइट इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज, प्रकाश से अंधकार दूर होता है। इसी परंपरा अनुसार हम ये कार्यक्रम की शुरुआत कैंडल लाइटिंग से करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंच पर हमारे सभी महानुभावों का कि वो कैंडल लाइटिंग द्वारा इस कार्यक्रम का मंगलमय शुरुआत करें। गोपाल ऑल्सो, मैडम आप भी आ जाइए। मिसेस गोपाल, कैन आई रिक्वेस्ट ब्रिगेडियर हरबीर, आप भी ज्वाइन कीजिए स्टेज पर। ब्रिगेडियर हरबीर,
परिवर्तन की है ये ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
We are very fortunate to have amongst us today as the chief guest Shri Ajay Kashyap, IPS, DG Home Guards, Delhi. A few words about the DG. Shri Ajay Kashyap is an officer of the IPS batch of 1985. He has done various appointments in Delhi, Andaman Nicobar, and Central Deputation to CRPF as DIG, as Additional DCP Northeast District in Delhi from 1992 to 94, he handled several sensitive riot-prone areas. That was the time when we had this Babri Masjid demolition. So he handled those sensitive areas. As Chief of Investigation and Internal Oversight from 1994 to 95, he has served at the United Nations in Mozambique. He has been DIG in the CRPF from 2003 to 2006. Prior to his appointment as DG Home Guard, he was DG Tihar Jail, and that is the time when we had gone to invite sir. Sir ka us samay bhi concern apne jo जेल में इतने सारे जो कैदी थे उन्हीं के प्रति था, और उन्होंने एक चीज कहा था कि इस प्रोग्राम में तो मैं आना चाहता हूं, लेकिन इसके अलावा मैं आपके यहां जो शांतिवन में बहुत बड़ा आपका जो किचन है जहां आप इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाते हैं, तो मैं वो भी देखना चाहता हूं कि उसमें से अगर कुछ चीजें, कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ उधर की मेथोडोलॉजी हम तिहाड़ जेल में भी इम्प्लीमेंट कर सकें, जिसके कारण हमारे कैदियों को भी फायदा हो सके। तो उनका कंसर्न हर समय अपने ट्रूप्स के प्रति रहता है। वर्तमान में आप डीजी होमगार्ड्स हैं, और हमें बहुत खुशी है सर कि आप इतना अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आए। आई वुड रिक्वेस्ट श्री अजय कश्यप टू गिव हिज वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग्स।
इस मर्म स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पर बैठी परम आदरणीय राजयोगिनी दादी शुक्ला जी, मंच पर बिराजी दादी जानकी जी, हमारे परम आदरणीय स्क्वाड्रन लीडर अशोक गाबा रिटायर्ड, राजयोगी निर्वैर जी, एडीजी आरपीएफ श्री पीके अग्रवाल, आईजी एंड डायरेक्टर आईएसए श्री भंडारी, मेरे परम मित्र कर्नल सती, यहां पर मौजूद मेरे सीनियर कॉलीग और दिल्ली के भूतपूर्व कमिश्नर श्री बीके गुप्ता जी, यहां पर मौजूद तमाम फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज, हमारी इस संस्था की ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां, आप सबको मेरा अभिनंदन, मेरी शुभकामनाएं। शुरू में मैं दो शब्द उन बहनों के लिए और भाइयों के लिए कहना चाहूंगा जिन्होंने निरंतर छह साल प्रयत्न किया है कि मुझे
लगातार निमंत्रित आमंत्रित करते रहें इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। किसी विवशता की वजह से मैं उस समय आप लोगों के बीच आ पा रहा हूं जब मेरे को एक दूसरा चार्ज मिला है, और ये अत्यंत सौभाग्य की घड़ी है कि मैं इस मौके का यहां पर लुत्फ उठा रखा हूं। मैंने तमाम स्पीकर्स की बात बड़ी ध्यान से सुनी है, और इन ऑफिसर्स ने जो चीजें आपके सामने रखी हैं उसके बारे में मुझे और कुछ दोहराना नहीं है। केवल ये कहना है कि फोर्सेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, सिक्योरिटी फोर्सेज में, और हमारी जो संस्था है जिसमें मैं नया आया हूं, होमगार्ड में भी एक विशेष रूप की स्ट्रेस का अनुभव हम कर रहे हैं। लगातार उन परिस्थितियों से जूझकर जो हमारे अपने सिटीजन्स के समक्ष सोशल अनरेस्ट, सोशल टेंशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल इनसिक्योरिटी, सोशल प्रॉब्लम्स को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उन टेंशन्स को जब हम झेलते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन टेंशन्स का कुछ ना कुछ असर हमारे ऊपर भी होता है। और ये जो कार्यक्रम है स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस, पर्टिकुलरली विशेष इसमें जो फोकस है वो लीडरशिप के ऊपर है, ऑफिसर्स के ऊपर है और जेसीओस के ऊपर है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसको हमें सबको आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा अपना विचार है। आज के युग में आपने देखा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं लेकिन सबकी हेल्थ और वेलनेस खराब होती जा रही है। आधुनिक घड़ियां हैं जो माइक्रोसेकेंड्स का समय हमको हर घर में बता देती हैं, लेकिन आपस में हमारे पास कोई समय नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए। बेटा बाप से नहीं बात कर रहा, बेटी माँ के अनुकूल नहीं बात कर रही है, एक ही घर में रहते हुए भी परिवार के चार सदस्य यदि हैं तो चारों अलग अलग दिशाओं में हैं। आज के युग में तेज से तेज गति वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, कार्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास वो फासले बढ़ते जा रहे हैं जो आपसी हृदयों में दूरियां पैदा कर रहे हैं। हमारे पास तमाम दुनिया भर की सुविधाएं हैं जिससे हम डेटा और इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, तमाम तरह की डिग्रियां यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो जो बेसिक विजडम होता है, जो समझदारी होती है, वो कहीं दिखाई देने को नहीं मिलती है। इस तरह का जब माहौल हमें सामने दिखता है तो ये प्रश्न जरूर आता है कि मूल रूप से वो क्या ऐसे सवाल हैं जिसके उत्तर से हम अपनी इस एग्जिस्टेंस को, इस बेसिक सवाल को कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं और मैं किस दिशा में जाने के लिए यहां पर जन्म लिया है, इन सवालों को मैं कैसे, इनका मैं उत्तर ढूंढूं। इस तरह के जो मूल रूप से स्वाभाविक और बेसिक क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको खुद खोजना पड़ेगा, और उसकी सहायता यहां पर जो सेमिनार हो रही है, यहां पर जो मार्गदर्शन के लिए आपके जो मेंटर्स और टीचर्स और इस संस्था से जुड़े हुए जाने माने लोग आए हुए हैं, वो आपको शायद इस बारे में कुछ विशेष ज्ञान दे सके। तो मेरा ये अनुग्रह है कि आप इस मौके का पूर्ण रूप से फायदा उठाएं, और यहां पर जो समय आप सरकार की ओर से लेके आए हैं उसका पूरा पूरा आप बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। यदि हम इन सवालों का सही रूप से जवाब ढूंढ सकते हैं तो हम चाहे जितनी भी उथल पुथल के माहौल में रहें, लेकिन एक आंतरिक, एक अंदरूनी हमें सांत्वना मिलेगी, एक अंदरूनी हमें बैलेंस मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम मिलेगा, जिससे हम एक स्वाभाविक रूप से एक बेटर सिटीजन बन सके। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें कि एक सक्सेसफुल लाइफ के क्या मापदंड हैं, तो मैं केवल तीन चीजों पर, क्योंकि अब हमें भी काफी अनुभव हो गया है, अगले साल मेरी रिटायरमेंट है, मैं 60 साल का हो जाऊंगा, जब एक लाइफ साइकिल से आप गुजर जाते हैं और उतार चढ़ाव से कई चीजें देख लेते हैं तो कई चीजें समझ में आ जाती हैं। हमने क्या पोस्टिंग करी, हमने क्या मेडल हासिल किए, हमें कितने डिस्क मिले, हमें कितने कमेंडेशन मिले, ये चीजें बहुत ही एथीरियल हैं, इसका कोई मुआयना नहीं रहता है। कोई भी ये नहीं समझता या याद रखता कि आप किस पोस्ट से रिटायर हुए थे और क्या आपका योगदान था। बहुत कम ऐसे महापुरुष हो पाते हैं जो एक लेगेसी वैल्यू छोड़कर जाते हैं। जो बेसिक तीन चीजें हैं जो मैं समझता हूं जिसके मापदंड से आपने अच्छी जिंदगी बिताई है या नहीं, वो ये है कि जब आपकी आयु बढ़ती है तो क्या आपकी हेल्थ, आपकी सेहत और आपकी जो बेटर हाफ है उनकी सेहत सही है या नहीं है। यदि सेहत अच्छी नहीं है तो फिर जो भी आपने कमाया है, जो भी आपने उपलब्धियां पाई हैं, उसका कोई मूल्य रखता नहीं है। दूसरा जो मापदंड है वो ये है कि आपने क्या अपने बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा इस तरह से दी है, उनको उस तरह के वैल्यूज और मूल्य सिद्धांत सिखाए हैं कि वो आपके जाने के बाद अपने पांव पर खुद एक समझदार नागरिक की तरह अपनी जीवनी बिता सकते हैं या नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि जब आप इस दुनिया से जाएं, क्या आपकी पासिंग एक पीसफुल तरीके से है, बिना किसी और के ऊपर बोझ बने हुए, या आप रिस रिस के, घिसट घिसट के, रेंग रेंग के लोगों के ऊपर बोझ बनके उनको परेशान करके इस दुनिया से आप विदा लेते हैं। केवल इन तीन चीजों की ही जो पूरे जीवनी की जो समीक्षा है, इन तीन सवालों में ही आप उसको अग्रसर कर सकते हैं। अब यहां पर आए हैं, आपको एक नया अनुभव मिल सकता है, वो ये है कि अंदरूनी तौर पर यदि हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो क्या हम इस जीवन में परमात्मा के साथ एक वार्तालाप कायम कर सकते हैं या नहीं। और यदि हम इस अंदरूनी ताकत को समझ लें तो मेरे ख्याल से हम एक सक्सेसफुल जर्नी का एक अनुभव कर सकते हैं। और यही मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको आकर खोजना चाहिए और अपने जो मेंटर्स हैं, यहाँ पर जो शिक्षक हैं, यहाँ पर जो आपको संबोधित करने आएंगे, उन लोगों से इन चीजों की जानकारी आप ले सकते हैं। मेरा यहाँ पर आने का मकसद, जैसे आपने बताया, यहाँ के मॉडर्न किचन का देखने का था, लेकिन एक उससे भी अहम मकसद ये था कि यहाँ पर हम सभी लोगों को अपनी संस्था से नहीं भेज सकते। जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली होमगार्ड एक बहुत छोटी सी संस्था है, वहां पर साधन कम है और जो लोग वहां पर ऑलरेडी नियुक्त हैं उनके ऊपर ड्यूटीज का इतना भार है कि हम उनको बहुत ज्यादा संख्या में यहां भेज नहीं सकते। लेकिन हम चाहेंगे, यदि आपकी साझेदारी हो तो एक MOU दिल्ली होमगार्ड के साथ हम एंटर करना चाहेंगे, जिसमें हम आपके मार्गदर्शन में, आपकी सुपरविजन में और आपके संयोजन से एक कंटिन्यूस प्रोसेस हम अपने होमगार्ड के लिए भी वहां पर कायम कर लें। हमारे पास एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग फैसिलिटी है, उसका हम पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हमारे पास उस तरह की कैपेसिटी दिल्ली में ही कायम हो जाएगी तो हम और लोगों को इसका लाभ दे सकते हैं। क्योंकि मेरे अपने विचार से पर्सनली ये एक बहुत ही अहम चीज है जो आज के टाइम में जरूरी है करना। एक बार फिर मुझे यहां पर, और मैंने जैसे सुना जेल के बारे में आपने बात की, मैं दो शब्द उसके बारे में भी कहूंगा, क्योंकि मेरे जो सीनियर कॉलीग हैं श्री बीके गुप्ता जी, वो भी जेल के डायरेक्टर जनरल रहे हैं और वो भी इन बातों से सहमत रहेंगे। आज जेल में 17,000 से ज्यादा कैदी हैं। जेल में जो भी प्रवेश करता है उसको एक अंदरूनी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। यही कारण था कि जेल में 9 से लेकर 10 सुसाइड हो जाते थे एक साल में। उसके लिए हमने कई प्रावधान किए। जब हम वहां पर थे तो सुसाइड की संख्या 9 से 10 साल के से लेकर साल में एक तक हम ले आए थे, क्योंकि हमने कुछ मेंटल वेलनेस और मेंटल हेल्थ के ऊपर कई प्रोग्राम शुरू किए थे। लेकिन अंदरूनी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अभी और भी जरूरत है हमें आगे बढ़ने की। कुछ महत्वपूर्ण योगदान हमारे सिस्टर सारिका और उनकी टीम वहां पर दे रही हैं। कर्नल सती भी वहां पे आए, उन्होंने देखा, लेकिन इसको और हमें विस्तृत रूप से बढ़ाना पड़ेगा। और यदि ये प्रोग्राम भी अगर जो वर्तमान डीजी हैं उनके साथ अगर आप करना चाहें और उनका सहयोग रहा तो इसको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानकर खुशी होगी कि माउंट आबू में सबसे पहले जो इंडियन पुलिस सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग माउंट आबू में होती थी, वो इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी में ही होती थी। जब 1976 में हमारी अपनी आधुनिक एकेडमी बन गई हैदराबाद में तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग है यहां से वहां पर शिफ्ट की गई। मैं माउंट आबू अपनी धर्मपत्नी के साथ 20 साल के बाद आ रहा हूं और ये उस समय भी हम यहां ब्रह्म कुमारी आश्रम में आए थे, यहां का दौरा वौरा किया था, लेकिन मैं वहां पर रहा था आपकी आईएसए एकेडमी में। और आज यहां पर रहकर यहां पर जो हमारा स्वागत हुआ मेरा और मेरी वाइफ का, बहुत अच्छा लगा हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मुझे यहां पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि यहां पर जो शुरुआत हो दिल्ली होमगार्ड के साथ एमओयू के जरिए उसको आपकी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उसको हम जल्दी आगे बढ़ा सकेंगे। जय हिंद।
थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन। आपने कुछ प्रश्न पूछे जिसके कारण हम सब उसके ऊपर सोचेंगे अगले 3-4 दिनों में। और होमगार्ड्स में आपने जो इनविटेशन दिया कि फोर्स के सभी लोग यहां नहीं आ सकते तो हमारी फैकल्टीज वहां जाए, मुझे याद है कि शुरू में जब सिक्योरिटी विंग बनी तो बहुत थोड़े प्रोग्राम होते थे और वो यहां होते थे। और शुरू में हमारे एक नेवी के वाइस एडमिरल सुरेश मेहता, जो आगे चलकर चीफ भी बने, उन्होंने सबसे पहले हमको ये बात बताई थी जब हम लोग नेवी के कुछ ऑफिसर आते थे और हमने कहा था कि ऐसे प्रोग्राम है और लोगों को भेजो, तो उन्होंने यही कहा था कि आपके यहाँ तो हम बहुत थोड़े भेज सकते हैं, आप हमारे यहाँ आओ। और वो एक मोटिवेशन था कि फील्ड एरिया में जाकर फोर्सेस में फील्ड फॉर्मेशंस में इस तरह के कार्यक्रम करने। और उसके बाद से आज तो 13-14 वर्ष हो गए और बहुत सारे फील्ड फॉर्मेशंस में प्रोग्राम होते। तो सर हम होमगार्ड्स के लिए भी जरूर हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की तरफ से फैकल्टीज भेजेंगे और जो भी हो सके हम अवश्य करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के चेयरपर्सन है स्क्वाडन लीडर अशोक गाबा, रिटायर्ड स्क्वाडन लीडर। रिटायर्ड अशोक गाबा इज ग्रेजुएट इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। He was born in a spiritual family in 1947 and joined Rajyoga meditation classes when he was serving as a pilot officer at Delhi in January 1972. आपने Air Force से premature retirement लिया और 1983 से आप समर्पित रूप से Mount Abu मुख्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। Presently he is serving as a manager of Gyan Sarovar Academy located in this present academy and looks after the communication facilities at the academy. As chairperson of security services wing, he coordinates national level programs of security services wing. In June 2016, he suffered a major paralytic attack, but with his strong will and determination, he has recovered quite well and continues to inspire us all to serve the security personnel. शुरू के कई वर्षों में security services wing जब बहुत छोटा था तो अशोक गाबा जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं एक लाइन में ही कहूंगा, ही वॉज ए वन मैन आर्मी। सारा कार्य वो खुद करते थे, पूरे भारत में सभी फोर्सेस में जाकर ये एक माइंडसेट चेंज करना कि कैसे आज के समय में आंतरिक शक्ति का विकास करना भी जरूरी है, उसका पूरा श्रेय अशोक गाबा जी को जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक गाबा जी को कि वो अपने अनमोल वचन हम सबके सामने रखें।
ओम शांति। आदरणीय शुक्ला दीदी जी और आईजी बीएसएफ आईजी भंडारी साहब और अग्रवाल साहब एडीजीपी दिल्ली के और हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय कश्यप साहब आईपीएस डीजी होमगार्ड, आप सभी को मिलकर के मुझे बड़ा हर्ष होता है कि वी हैव सो मच एनर्जेटिक पीपल एज ऑफिसर्स JCOs इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. वी फील प्राउड ऑफ यू. मैंने बचपन से मुझे शौक है आप सभी महानुभावों की सेवा करने का और मुझे बड़ा हर्ष होता है कि आप लोगों के बीच में आकर पहले तो हम लोग साइंटिस्ट इंजीनियरिंग में थे बिकॉज आई एम इंजीनियर. तो 2001 में ये प्रोग्राम आदरणीय हमारे उन्होंने बहुत सेवा करके सिक्योरिटी विंग स्टार्ट किया. सो मुझे बड़ा हर्ष होता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ग्रीवेंसेज एंड ऑल दैट आसपास जो लोग होते हैं इन सब चीजों से ऊपर उठ करके हम लोगों ने सिक्योरिटी विंग का निर्माण किया और आज देख रहा हूं पहले तो मुश्किल से 25-30 लोग आते थे और आज आई सी अबाउट हंड्रेड ऑफ पीपल कमिंग इन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं भी पूरे भारतवर्ष में और अब्रॉड सेवाएं की हैं. कई बार चारों पांचों कॉन्टिनेंट्स का चक्कर लगाया है लेकिन आप सबको देखकर मुझे हर्ष होता है. आई फील एनकरेज टू सी ऑल दिस सीनियर ऑफिसर्स एंड JCOs एंड सो मेनी और केरला पुलिस से भी पहली बार लोग आए हैं. तो मुझे बड़ा हर्ष होता है कि आप सभी को मिल करके और मैं आप सभी को ग्रीटिंग के साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि जब इस कोर्स में आते हैं तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट के साथ और भी कार्यक्रम होते हैं. जैसे आपको दिलवारा मंदिर पीस पार्क आपको ले जाया जाएगा. जब आप पीस पार्क में जाएंगे तो आप आह्लादित होंगे कर आपको इतना आनंद आएगा. और वो जब आप आएंगे हम लोग भी इस बाह होंगे. तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके सिक्योरिटी पर्सनल साहिबान को देख करके. तो मैं यही कहूंगा कि इन स्पाइट ऑफ जो स्ट्रेसेस हैं आप 3 दिन में देखेंगे वो छुमंतर की समझिए छुमंतर हो जाएंगी और आपका जीवन बहुत सुंदर सुखी और आपके फैमिलीज भी टोटली स्ट्रेस फ्री होंगे और मुझे ये विश्वास है. और हम लोगों का यही आपको रिक्वेस्ट है कि इन 3 दिन में आप 100% स्ट्रेस फ्री होकर के जाएं और आपकी फैमिलीज भी. और विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू टेक योर लीव. थैंक यू वेरी मच.
सर आपको जितनी खुशी हुई हमको आपको देखकर उससे भी ज्यादा खुशी हुई क्योंकि आज से 3 वर्ष पहले जब आप एक ऐसी ही सिक्योरिटी सर्विसिंग की सेवा में ट्रेन से जा रहे थे चेन्नई से मदुरई तो रात में ट्रेन में एक पैरालिटिक अटैक हो गया और पूरी आधी बॉडी की पैरालिसिस हो गई थी. कई महीनों तक स्पीच भी नहीं था बोल भी नहीं सकते थे एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे. तो उस अवस्था से आज आपको स्टेज पर आकर आप इतने अच्छे सुंदर शब्द बोले, तो आपकी ये विल पावर जिसके कारण आप रिकवर किए, तो हम बहुत बहुत हमें सबको खुशी है आपको देखकर। थैंक यू वेरी मच सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष हमारे इस संस्था में सबसे वरिष्ठ भाइयों में ब्रह्मा कुमार निर्वेर भाई जी हैं, जो माउंट आबू में रहकर एडमिनिस्ट्रेशन का सारा कारोबार संभालते हैं। आपने हमारे लिए इस प्रोग्राम के सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम के लिए अपनी गुड विशेष का एक संदेश भेजा है जिसका हमारे पास वीडियो है, 7-8 मिनट का ये वीडियो है। हम भ्राता निर्वेर भाई जी का ये संदेश सुनेंगे। और भ्राता निर्वेर भाई जी ऐसे इस ब्रह्मा कुमारीज में सेक्रेटरी जनरल हैं, ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी जनरल हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के, और वाइस प्रेसिडेंट है जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर लंदन के। आपका सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रति, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के प्रति विशेष प्यार है, और इसका कारण है कि एक समय आपने भी एक शॉर्ट टेन्योर फोर्सेस में किया है। तो आप भी, हम लोग कहते हैं वंस ए फौजी ऑलवेज ए फौजी, तो लेट 50s और अर्ली 60s में आपने कुछ समय आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस किया है, इसलिए तब से आपको सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रति विशेष प्यार है। तो जब हमने कहा कि इस कार्यक्रम में आप जरूर पधारे, तो उन्होंने कहा कि उनके हेल्थ के कारण वो नीचे के हमारे कॉम्प्लेक्स में है, वो खुद तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने हमारे लिए संदेश भेजा है, तो हम उनका संदेश सुनाएंगे। दाता निर्वेर भाई जी,
ओम शांति। हमारे अति प्रिय भाइयों, आपको आपके इस कॉन्फ्रेंस के लिए और आपकी डायलॉग के लिए कोटि कोटि मुबारक हो। यूं तो आप सभी पूर्णतया सशक्त हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर भी जिस तरह की सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे चाइना की बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान की दूसरी साइड बॉर्डर्स पर, और इसी तरह से समुद्र के द्वारा भी हमेशा चौकन्ने रहना पड़ता है, विजिल बहुत आवश्यक है। तो आप सभी जो भी निमित्त तीनों सेनाओं के व उनके साथ सब्सिडरीज दूसरी सेनाओं के जो भी विशेष आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ज्ञान सरोवर के प्रांगण में आकर आपस में अनुभव की लेन देन करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे अशोक भाई, कर्नल सती, कमांडर शिव सिंह और ब्रह्मा कुमारी बहनें कुछ आपको नवीनता, जीवन में नवीनता लाने की बात, क्योंकि ये एक गंभीर सब्जेक्ट है। अपने मन का संतुलन सदा बना रहे इवन इन द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन, और उसमें आप अपनी धैर्यता ना खोएं और जो राइट डिसीजन है वो राइट टाइम पर ले सकें, उसके लिए विशेष कुछ गाइडेंस ब्रह्मा कुमारी बहने व ब्रह्मा कुमार भाई अपने अनुभव से आपको जो गाइडलाइंस देंगे आप उस पर विचार करना, किसी भी सिचुएशन में विजयी होंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बात आप सदा अपने दिल में रखें। इससे बहुत आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और विजयी होने के लिए ये अंडरस्टूड है कि नॉलेज पूरी चाहिए, नॉलेज की डेप्थ भी पूरी चाहिए। अपना जो भी कार्य है उसकी पूरी आद मध्य अंत उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। और इसके साथ में देखा गया है कि आर्म्ड फोर्सेस के हमारे भाई बहनों को जो आम जनता जिस नजर से देखती है, एक प्रकार से अपना रक्षक समझते हैं, तो जो रक्षक हैं उनके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज एकदम ऊंचाई से भरी हुई होनी जरूरी है। उसके अनुकूल हर पर्सनैलिटी हमारी बनी हुई हो तो आप देखेंगे कि आप अपने इस जीवन में वह कार्य कर सकते हैं जो कोई अवतार लेने वाली आत्माएं, अवतरित होने वाली आत्माएं वो कार्य करती है। और विक्ट्री इज अवर बर्थ राइट, ये अपने अंदर इस तरह का एक संकल्प ले ले, कुछ भी हो पॉजिटिव थिंकिंग से विक्ट्री अवश्य होती है। कभी भी नेगेटिव बात ना अपने मन में आने दें, पॉजिटिविटी इज द मास्टर की टू अचीव विक्ट्री इन एवरी सिचुएशन। दिस इज व्हाट आई फील वी शुड लर्न, और उसमें विक्टोरियस होने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की जो शक्ति है वो बहुत काम करती है। आप दो तीन दिन जो ज्ञान सरोवर में रहेंगे और उसमें थोड़ा मेडिटेशन का भी आनंद लेंगे, आप देखेंगे कितना सहज है परमात्मा के साथ मन लगाना, कितना इजी है। इसका नाम ही है सहज राज योग। सहज है लेकिन बुद्धि का काम है, बुद्धि राजा है सारे हमारे इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की। तो बुद्धि से परमात्मा के साथ और उसके साथ थोड़ा सा इमोशनल पार्ट भी उसमें आ जाता है कि वो हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं और खुदा दोस्त हैं। जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है किसी की राय लेने की, द वाइजेस्ट काउंसिल यू कैन गेट इज फ्रॉम द सुप्रीम बींग, और वो थ्रू लिंकिंग द माइंड विद सुप्रीम फादर। बहुत सहज है। अगर ये बात आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो आप हर सिचुएशन में सफलता के अधिकारी बन जाएंगे। तो आप सभी विशेष आत्माओं को कहूं, विशेष अधिकारियों को कहूं, हमारी नमन और साथ साथ में आपका वेलकम, और सफलता को प्राप्त करने वाले आप परमात्मा पिता के सफलता के सितारे हैं, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। ओम शांति।
आदरणीय निर्वेर भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मैसेज दिया हम सबके लिए। एक और विशेष पर्सनालिटी है जिनका भी हमारी इच्छा थी कि वो भी हमारे बीच में हो, जो कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की चीफ है, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी। वो भी अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष आत्मा है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी वर्तमान में भारत में नहीं है, भारत से बाहर सेवाओं में गई है। तो आदरणीय दादी जानकी जी, आदरणीय दादी जानकी जी की विशेषता यह है कि आज उनकी आयु 103 साल हो गए, 103 ईयर्स, 103 ईयर्स हो गई। तो आप जानते हो जैसे जैसे शरीर बुजुर्ग होता है तो शरीर में अपनी लिमिटेशंस होती है, लेकिन शरीर चाहे कितना भी कमजोर हो, आत्मा, उनका मन बुद्धि उनकी एकदम शक्तिशाली रही। और आज भी वो थोड़ा टाइम भी एक जगह नहीं बैठती, हर थोड़े दिन के बाद उन्हें कुछ ना कुछ सेवा करने का संकल्प रहता है। तो दादी लंदन में है और हमने कहा कि ऐसे सिक्योरिटी विंग का प्रोग्राम है, तो एक 3-4 मिनट का संदेश दादी जानकी जी ने भी हमको वीडियो द्वारा भेजा है, हम वो भी देखेंगे। आदरणीय दादी जानकी को।
ओम शांति, ओम शांति। सिक्योरिटी विंग ज्ञान सरोवर में बैठे आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग सोच रहे हैं, हम उनको क्या साथ दे रहे, हमारा काम है ऐसे कार्य में साथ देना। साथ कैसे देंगे? शांति, खुशी है ना, तो परमात्मा बाप के मदद खींच के विश्व में फैला दे। विश्व में फैलाना ये एक बड़ी हिम्मत वाला काम, हिम्मत से बच्चे मदर बाप बन रहे पीस वर्ल्ड में जाते हैं ना, वर्ल्ड में फिर कैसे आएंगे, पीस वर्ल्ड, पीस वर्ल्ड में आएंगे, वर्ल्ड पीस लाएंगे। हम तो ये समझते वर्ल्ड में पीस आने वाली है, अशांति जाने वाली है, क्योंकि अशांति से दुख है, दुख से क्या मनुष्य की लाइफ है। तो लाइफ ऐसी हो तो एक एरो के लिए अपने जीवन पांचों अंगुलियों का होश चला के माना पांच बातें, मैं कौन, मेरा कौन, मैं हूँ आत्मा, मेरा है परमात्मा, मुझे लाइट, जितना लाइट रहेंगे उतनी माइट आएंगे, एवरीथिंग राइट हो जाए। पंजाब में आर्मी वाले देख रहे हो साखी होकर के कितनी मेहनत करते हैं दुनिया में शांति लाने के लिए, झगड़ा लड़ाई ना हो, ये उनके अंदर भावना है अशांति दुख चला जावे, सुख शांति आ जावे। तो पहले क्वेश्चन है सुख शांति आवे तब दुख शांति चला जाएगा, या दुख शांति के जाने से सुख शांति आएगा। तो हम ये मृत्यु वालों इतनी मेहनत कर रहे हैं विश्व भर में शांति लाने के लिए, शांति जिस घड़ी आएंगे बंदर पर अशांति आए जाएंगे, शांति लाएंगे। इतनी मेहनत तो करते आ रहे हैं तो सफल हो जा मेरे भाई मेरे बहन है, क्योंकि बहुत करके भाई दिखाई पड़ते हैं पर हम बहने कम नहीं है, बहने भी दिल से कम करते हैं। जैसे किया तो विषय जो भी करते हैं उसे जीत मेरे तो ये अंगुली, एक परमात्मा बाप, दूसरा बना विश्वास, अपने विश्वास, विश्वास यह भी होता है, यह भी होता सब में से देर है। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आदरणीय दादी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्र में भी दादी जी का इतना उमंग उत्साह कि पूरे विश्व में चक्कर लगाती रहती है, और आज भी उनकी आवाज इतनी बुलंद है। आप बहुत ही योगी आत्मा है, और जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में हुई और बहुत जगह इसके ब्रांचेस भारत में हुए, तो ये जो फाउंडिंग फादर थे उनका संकल्प था, क्योंकि पूरे विश्व की सेवा होनी है तो पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलना चाहिए। तो दादी जानकी को 1972 में फाउंडिंग फादर ने कहा कि आपको लंदन जाना है और वहां सेवा करनी है। तो दादी जी ने कहा मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती। तो फाउंडिंग फादर ने उनको यही कहा कि आप योगी आत्मा हो, आपके वाइब्रेशंस, आपके संकल्प और वाइब्रेशंस के द्वारा ही सेवा होगी। तो उस समय दादी जानकी जो गई, आज 140 कंट्रीज में ब्रह्मा कुमारी की सेवा है। तो योग के बल से कितना बड़ा उन्होंने सेवा की, और इसका साइंटिफिक एविडेंस 1978 में मिला, जब साइंटिस्ट लोगों ने उनके माइंड को चेक किया। तो हमारा माइंड भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में चलता है। तो दादी जानकी की ये विशेषता थी कि जब वो बात कर रही है तब भी माइंड उनका सबसे स्टेबल, स्लो। हम लोग जब नींद की गहरी नींद में थोड़ा टाइम, हमारी माइंड डेल्टा फ्रीक्वेंसी में चलती है, हम लोग बोलते हैं 2 से 4 हर्ट्ज पर सेकेंड। तो दादी जानकी जब जागृत अवस्था में थी, जब बात कर रही थी, तो उनका माइंड सदैव डेल्टा फ्रीक्वेंसी में था, और उनको टाइटल मिला था मोस्ट स्टेबल माइंड ऑन अर्थ, डेल्टा वुमन। तो एक पावरफुल माइंड के कारण आज शरीर कमजोर होते हुए भी वो अपने शरीर को चला रही है और पूरे विश्व भर में सेवा कर रही है। दादी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिए दादी जी ने हमको प्रेरणाएं दी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंत में हमारे बीच में हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की वाइस चेयरपर्सन राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शुक्ला दीदी हैं। आप दिल्ली में हरिनगर से आई हुई हैं। 1954 से आप इस ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, और दिल्ली में हरिनगर सब जोन के अंतर्गत 100 से भी अधिक सेवा केंद्रों का आप संचालन करती हैं। वहां विशेष एजुकेशन विंग की भी आप दिल्ली में एजुकेशन विंग का भी कारोबार संभालती हैं, और सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का जो नेशनल ऑफिस है वो भी दिल्ली में है, क्योंकि सारे फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स है, और वहां से बहुत सुंदर रूप से गाइडेंस करके ये सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की सेवाएं कर रही है आदरणीय राजयोगिनी दादी।
ओम शांति। आप सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन आदरणीय वक्तागण, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी प्रशासक वर्ग के रक्षा सुरक्षा प्रदान करने वाले भाई बहनों को देखकर मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, और साथ साथ ये वाइब्रेशन आप सब की तरफ से आ रहा है कि आप सब शुद्ध संकल्पों का बीज बो करके आए हैं। कहाँ आए हैं? ज्ञान सरोवर के आबू पर्वत में, अब्बा के घर में आए हैं, अर्थात अपने घर में आए हैं। इस अपने घर में आप एक शुद्ध संकल्प लेकर के आए हैं कि कैसे जीवन के अंदर, मन के अंदर, आज की परिस्थितियों के अनुकूल अनेक प्रकार का अंधकार छा गया है, उसकी छाया है। उस अंधकार के वशीभूत होकर निराशा, उदासी, गम, व्यर्थ चिंतन जो जीवन को धरातल के ऊपर ले जाता है, उसको कैसे खत्म किया जाए और ज्ञान का प्रकाश कैसे जीवन के अंदर लाया जाए, इस ज्ञान सरोवर में आने का आपका अभिप्राय मैं समझती हूं। यही है और हम सब का भी एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप सब इस पवित्र धरा पर आए और आप सबका मनोबल, क्योंकि आपके हाथ में समाज, देश, राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं। अब इस जिम्मेवारी को हम कैसे निभा सकते हैं? जब पहले स्वयं की रक्षा सुरक्षा हम कर सकते हैं, तब हमारा मनोबल इतना उज्जवल होगा जो हम दूसरों को भी रक्षा सुरक्षा प्रदान कर सके। परंतु अनुभव ये कहता है कि आज हमारे नौजवानों का मनोबल आज की परिस्थितियों के अनुकूल बहुत कम हो गया है। निराशा निराशा जीवन के अंदर पनप रही है। परंतु ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सबको एक शुभ संदेश देना चाहती है कि निराशा एक अच्छे महान व्यक्तित्व वाले का, एक अच्छे प्रशासक का महाशत्रु है। आशा हमारे जीवन का उत्थान करने की, जीवन को उज्जवल बनाने की, जीवन को सशक्त बनाने की और दुनिया के लिए भी सशक्त काम करने की शक्ति प्रदान करती है। कहते हैं आशा में तेज है, आशा में बल है, आशा में उमंग उत्साह है, आशा में संसार का संचालन करने की शक्ति है। तो हम कैसे अपने आप में पहले आशावान बने, अपने आप को कैसे समर्थ बनाएं, अपनी मनोस्थिति को कैसे उज्जवल बनाएं, जिसके कारण, जिससे ही हमारी अपनी अवस्था इतनी अच्छी और श्रेष्ठ हो जो हम दूसरों को अच्छी व्यवस्था दे सके। कहते हैं व्यक्ति की जैसी वृत्तियां होती हैं वैसा ही वातावरण बनता है, जैसी उसकी मनोस्थिति होती है, अवस्था होती है, वैसी ही वो व्यवस्था होती है। कहते हैं जैसा रचयिता होता है वैसी उसकी रचना होती है। तो आप सब मास्टर रचयिता है, तो मास्टर रचयिताओं की स्थिति जो है वो श्रेष्ठ कैसे हो, सशक्त कैसे हो, इंस्पायर करने वाली कैसे हो, उसके लिए मैं आप सबको एक सुझाव देना चाहती हूं कि जीवन में अगर 7 विशेष धारणाएं, विशेष बातों की तरफ ध्यान दिया जाए तो आपका मनोबल बहुत अच्छा बन जाएगा और आप एक अच्छे मार्ग प्रदर्शक बन जाएंगे और विजयी रत्न बन जाएंगे। तो 7 बातें, सबसे पहले स्नेह करना शुरू कीजिए, स्नेह प्रेम, क्योंकि व्यक्ति का अपने से पहले प्रेम हो, अपने से स्नेह हो, तब वो दूसरों को स्नेह प्रदान कर सकता है और स्नेह ही एक ऐसी टीम क्रिएट करता है। टीम वर्क कैसे संसार के अंदर, क्योंकि जब तक एक अच्छी टीम नहीं है, और टीम लड़ने झगड़ने से नहीं बनती है, टीम स्नेह प्यार से बनती है। मैं एक बैंक में गई थी परसों, मैंने वहां एक बहुत अच्छा सीन देखा जो मुझे बहुत बहुत प्रिय लगा। लंच हुआ, क्योंकि मैं कुछ लंच से पहले पहुंची थी, लंच हुआ, वहां के सारे मैनेजर, सीनियर मैनेजर से लेकर हॉल की इंचार्ज से लेकर एक चौकीदार से लेकर सब एक स्थान पर बैठ करके खाना खा रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब आपस में मिलजुल करके इतनी अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे और कोई ऐसा नहीं लग रहा था, और हम सब देखने वाले नजारा देख रहे थे। तो कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कोई के अंदर मैं बड़ा ऑफिसर हूँ और ये मेरे साथ एक खाना खिलाने वाली या चाय बना करके पिलाने वाली बैठी है, तो हम आपस में मतलब कोई संकोच हो ऐसा नहीं था। तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि अगर सभी ऑफिसेज के अंदर, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे कोई भी हो या कोई कंपनी हो, सब जगह पर ऐसे अगर प्रेम प्यार के साथ सद्भाव के साथ रहे तो कितना अच्छा होगा, और उससे हाथ में हाथ मिलाकर के कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता उनके नजदीक जरूर आएगी। सब संदेह के साथ हमारे जीवन के अंदर न्याय का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्याय ईश्वरीय गुण है और जहां न्याय का वास होता है वहां निष्पक्षता आती है और वहां कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं होता। और सबसे बड़ी जरूरत आज हम सबको है सद्भावना की, सद्भाव की, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सद्भाव और सद्भावना नहीं है, शुभ भाव और शुभ भावना नहीं है, तब तक भी हम कोई भी महान कार्य संगठित रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी छोटे बड़े जात पात का प्रश्न उठेगा ही और कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होंगे ही होंगे। इसी तरह से सहयोग, चौथी बात हमारे जीवन के अंदर सहयोग का होना बहुत बहुत अनिवार्य है। आज हम किसी को सहयोग देंगे तो कोई हमारे को सहयोग देगा, अगर हम किसी को सहयोग नहीं देंगे तो हम किसी से भी सहयोग नहीं ले सकते हैं दिल से। और पांचवी बात, हमारे जीवन के अंदर नम्रता का भी होना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक जीवन में संस्कारों में नम्रता नहीं है तब तक हम सुख नहीं दे सकते हैं। आप देखेंगे वृक्ष जब फल फूल से लग जाता है तो झुक जाता है, फल भी प्रदान करता है छाया भी प्रदान करता है और व्यक्ति आकर के वहां विश्राम करता है, सुख का अनुभव करता है। इसी तरह से अगर हम एक महान नेता बनना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो जीवन के अंदर नम्रता का होना भी परम आवश्यक है। और उसके साथ साथ दिव्यता, दिव्यता, क्योंकि आज साक्षी होकर के अगर हम सब अपने आप का निरीक्षण करें तो वो दिव्य धारणाएं जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है वो हम सबके पास नहीं है। सत्यता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, अहिंसा, ये मूल मंत्र है। हर एक अपने आप से पूछे कि हमारे में कहां तक सत्यता है, कहां तक प्रेम है, कहां तक दया और करुणा है, कहां तक अहिंसा है। हम छोटी छोटी बात में हिंसा करने में तुल जाते हैं, वो दिव्यता जो वास्तव में श्रेष्ठ और महान जीवन की आधारशिला है उसका होना भी परम आवश्यक है। और उसके साथ साथ फैमिली, पारिवारिक भावनाएं, जब तक हम एक विश्व एक परिवार है और हम उस सब परिवार के हम सब बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो जब हम एक परिवार एक पिता की संतान जिनको हम प्यार से बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है, तो जब हमारे अंदर ये ऊंची स्मृतियां सदा जागृत रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भारत देश स्वर्णिम संसार बन सकता है, सुख की देन लेन बन सकता है। क्यों? एक समय ऐसा था जब भारत स्वर्णिम संसार था, जहां शेर और बकरी या गाय एक घाट पर जल पीते, और आज बाप बेटा भी इकट्ठा नहीं रह सकता। क्यों? कारण बॉडी कॉन्शियसनेस ईगो माइंड है और कुछ नहीं है। आज यही बीज अपने अंदर बोइए कि मुझे ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जलाना है। ज्ञान तो बहुत है आप सबके पास, परंतु जो दादी ने लास्ट में बोला, मैं कौन, मैं किसकी, मैं किस लिए, इस बात का अगर ज्ञान हो जाए तो मानव का जीवन सार्थक हो जाएगा। यही मेरी आप सबके प्रति शुभकामना और शुभ भावना है। क्या आप 3 दिन के लिए यहां आए हैं? सबसे पहला पुरुषार्थ आप यही कीजिए कि मैं ज्ञान की अंजलि यहां से प्रसाद रूप में लेके जाऊं, कि मैं कौन हूं, मैं संसार के अंदर किस लिए आई हूं, मैं किसकी संतान हूं, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरी धारणाएं क्या है। और अब वापस यात्रा पर हैं हम सब, क्योंकि आप दुनिया के हालात देख रहे हैं, वापसी यात्रा पर है। तो ऐसा ना हो हम अंधकार में भटकते भटकते जाए, पापों की गठरी साथ लेकर के जाए। मैं ऐसा नहीं चाहती हूं। आप आए हैं ज्ञान सरोवर में, तो पापों की गठरी कैसे उतरे, पुण्य आत्मा कैसे हम बने, उसकी शक्ति आप जरूर यहां से 3 दिन में लेकर के जाएंगे, तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी और बहुत आप सबका भाग्य भी उज्जवल होगा। यही आप सबके प्रति मेरी शुभकामना और शुभ भावना है। ओम शांति शांति शांति।
आदरणीय शुक्ला दीदी, आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत देर से सुन रहे हैं मेडिटेशन के बारे में। अभी कुछ क्षणों के लिए हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए हमारे बीच में बॉम्बे से हमारी सीनियर राजयोग का टीचर आदरणीय दीपा बहन आई हुई हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपा बहन से कि कुछ क्षणों के लिए हमें मेडिटेशन का अभ्यास करें।
ओम शांति। मंचासीन हमारे आदरणीय शुक्ला दीदी, हमारे आदरणीय महानुभव रिस्पेक्टेड डिवाइन ब्रदर अजय कश्यप जी, आदरणीय केस भंडारी जी, आदरणीय पी के अग्रवाल जी, हमारे अशोक भाई गाबा, हमारे कर्नल सती जी, शिव भाई, हमारे कुशल भाई, और यहाँ आमंत्रित हम कहेंगे ईश्वरी निमंत्रण से आए हुए हमारे भाई बहन, और विशेष हमारे कहेंगे विश्व रक्षक के राष्ट्र रक्षक भाई बहन। जैसे हमने पूर्व वक्ताओं से सुना कि यहाँ आप विशेष इस इमोशनल रेजिलेंस को अपने अंदर सशक्त करने के लिए आए हुए हैं। हम जानते ही हैं कि हमारे मनोबल को हमें कैसे आंतरिक रूप से बढ़ाने के लिए ये राज्यों की सुंदर विधि हम यहाँ ईश्वर विश्वविद्यालय में सीख रहे हैं। जैसे आदरणीय शुक्ला दीदी ने भी आपको बताया कि गुणों को अपने अंदर धारण करना है, जिससे हर कार्य हमारा सहज हो जाएगा, विजयी बनेंगे। तो ये गुणों की ऊर्जा को चार्ज करने के लिए हमें मन बुद्धि को उस परम स्रोत के साथ जोड़ना है। इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन से आत्मा की ऊर्जा को हम चार्ज करते हैं। जैसे सुबह उठते ही एक नेचुरल हैबिट हो गया है कि हम पहले मोबाइल को चार्जिंग पर रखते हैं, ऐसा है, और फिर भी हमें लगता है कि सारा दिन चार्ज रहना चाहिए, इसलिए एक चार्जर हम ऑफिस में भी रख लेते हैं, दूसरा हम रास्ते के लिए भी पावर बैंक भी रखते हैं, ताकि ये जिम्मेवारी ले ली हमने कि मोबाइल सारा दिन चार्ज रहेगा तो कम्युनिकेशन रहेगा, कार्य जो हमें करना है वो हम निर्विघ्न कर सकेंगे। इसी रूप से राजयोग मेडिटेशन से हम अपने मन बुद्धि को इन गुणों से शक्तियों से चार्ज करते हैं। तो ये भी चार्जिंग की जिम्मेवारी है और रोज ये चार्जिंग करना आवश्यक है। तो चार्जिंग के लिए इसके स्रोत के साथ कनेक्शन जोड़ना है। वैसे भी हम कहते हैं कि जिनसे भी हम कनेक्शन जोड़ते हैं या आप भी इंटरेक्ट करते हैं सिविलियंस के साथ, इंटरेक्ट करते हैं सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, तो जिसके साथ इंटरेक्ट करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को जानकर, उनके बारे में समझकर फिर उनसे कम्युनिकेट करना, बातचीत करना जरूरी है। तो इसी रूप से हम देखते हैं कि राजयोग मेडिटेशन हम परमात्मा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उस सुप्रीम ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को मैच करना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन में जैसे आप वायरलेस से भी कम्युनिकेट करते हैं तो वेवलेंथ मैच करना जरूरी है। तो परमात्मा की फ्रीक्वेंसी कौन सी है? वो तो है ही शांति का सागर है, शक्तियों का स्रोत है। तो हमें अपने आप को भी उसी फ्रीक्वेंसी में, उस आत्मिक स्वरूप में स्थित करके कनेक्ट करना आवश्यक होगा। और इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी हमारे मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन से प्राप्त करेंगे। आज हम कुछ क्षणों के लिए इसका अनुभव करेंगे। तो जैसे हम अनुभव की बात कहते हैं तो ये अंतर की एक यात्रा है, जिस यात्रा के लिए हमारे दैनिक जीवन में हम इतना इसका अभ्यास नहीं है। तो कोई चीज का अभ्यास नहीं होता है तो थोड़ा उसके लिए हम सहयोग लेते हैं। इसी रूप से हम आपको कुछ विचारों के द्वारा इसका सहयोग देंगे। जैसे जैसे ये विचार आप सुनते जाएंगे, आप भी अपने मन को उसी विचारों में स्थित करते हुए मन की आंखों से उन विचारों को विजुलाइज कीजिएगा, ताकि हम फिर एक विशेष अनुभव कर सकेंगे। मेडिटेशन अर्थात ही राजयोग में हम अपने अंतर की यात्रा करते हैं। और दूसरा कदम है कि उस परम स्रोत के साथ मन बुद्धि को जोड़ते हैं। तो कुछ क्षणों के लिए हम अपने मन और बुद्धि को बाह्य जगत से समेट लेते हैं। हम जानते हैं हमारा कारोबार है, परिवार है, जिम्मेवारियां है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए मन की आंखों से अपने आप को देखते हैं। आज हमने बहुत समय के बाद अपने लिए कुछ समय निकाला है। फाइनली वो टाइम आ गया कि हम अपने आप के साथ बैठे हैं, मन की आंखों से अपने आप को देख रहे हैं, हमें अपना बाह्य स्व दिखाई दे रहा है। ये शरीर जो ईश्वरीय देन है, ये शरीर जो हमारा एक वहीकल है, और शरीर रूपी साधन को प्रयोग करने वाली, ये शरीर रूपी वहीकल को चलाने वाली मस्तक के बीच मैं एक आत्मा हूं। मन की आंखों से देखें कि मस्तक के बीच में मैं आत्मा, एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, सूक्ष्म सितारे के रूप में चमक रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अंतर के चक्षु के द्वारा मैं अपने आप को ही देख रहा हूं। मुझे आत्मा से ये शांति की ऊर्जा, शांति के वाइब्रेशंस सारे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। ये शरीर भी धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। वातावरण भी शांत होता जा रहा है। ये शांति की मनोस्थिति कितनी प्रिय है, क्योंकि यही मेरा निज स्वरूप है, ये मेरा नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस शांति की मनोस्थिति में स्थित होते हुए कुछ क्षणों के लिए मैं शांति के सागर, परमपिता परमात्मा जो विश्व का परम रक्षक है, मन बुद्धि को उस उसके पास ले जाता हूं। कुछ समय के लिए इस आवाज की दुनिया से बाहर अपने कर्म क्षेत्र, जिम्मेवारी, संबंध, इन सब बातों को भूलकर एक आंतरिक यात्रा से भी बाहर उस परम ज्योति के पास, उस शांति की दुनिया में मन बुद्धि को ले जाते हैं। इस सारे विश्व रूपी ग्लोब को देख रहे हैं, इस विश्व से पार, अंतरिक्ष से भी पार वो शांति की दुनिया है, जहां चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश ही प्रकाश है। शांति धाम, परम धाम, परमपिता परमात्मा का घर, सो मुझ आत्मा का भी निज धाम है। इस शांति की दुनिया में मैं आत्मा बिल्कुल ही शांत, सब कर्म बंधनों से मुक्त, निर्संकल्प और निश्चिंत हूं। यहां मैं अपने पिता परमात्मा के समीप हूं। परम ज्योति शांति का सागर है, और जैसे ही मैं उस परम पिता के समीप पहुंचता हूं, उस शांति के सागर से शांति की लहरों का अनुभव, परमात्मा का वो सानिध्य, ईश्वर पिता की समीपता मेरे मन, मेरे हृदय को कितना सुख दे रहा है। मेरे अंतर में शांति की ऊर्जा भरपूर हो रही है। अपने मन में जो भी विचार है, कुछ चिंताएं हैं, कुछ बोझ है, वो सब मैं ईश्वर पिता को सौंप देता हूं, और परमात्मा का असीम प्यार, उसकी असीम शांति और सर्व शक्तियों की ऊर्जा से अपने आप को भरपूर कर रहा हूं। परमात्मा की ये समीपता मेरे अंतर मन में गहरी शांति और शक्ति को अनुभव करा रही है। अपने आप को समर्थ और शक्तिशाली महसूस करते हुए अब मैं फिर से अपने आप को अपने कारोबार के लिए, अपनी जिम्मेवारियों के लिए ईश्वर ने जो विशेष जिम्मेवारी दी है उसको पूर्ण करने के लिए अपने आप को फिर से अपने वर्तमान में ले आता हूं। अपने मन को फिर से यहां के इस संगठन के प्रति उपस्थित करता हूं। आंखें अगर बंद है तो आंखों को खोल देते हैं। यहां का संगठन अब देख रहे हैं, लेकिन अंतर मन में जो शांति और शक्ति परमात्मा से प्राप्त की है उसको अपने अंदर महसूस करते हुए ही अब हम कारोबार में आएंगे। ओम शांति शांति।
दीपा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़े से समय में आपने सबको गहन शांति का अनुभव कराया। कार्यक्रम के अंत में वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं कमोडोर ए घोषाल रिटायर्ड को आमंत्रित करना चाहता हूँ। कमोडोर घोषाल 1976 में नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा इंडियन नेवी में कमीशन हुए। 35 वर्षों की सेवा के बाद 2011 में आप रिटायर हुए। लास्ट अपॉइंटमेंट आपका सीओ आईएनएस इंडिया था। पिछले 6 वर्षों से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमोडोर घोषाल को वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए।
ओम शांति। काफी समय हो गया है इसलिए मैं वोट ऑफ थैंक्स बिल्कुल संक्षिप्त में प्रपोज करूंगा। पहला हमारा धन्यवाद जाता है परम पिता परमात्मा का, जिनके आशीष से ये इतना सुंदर आज शाम का जो प्रोग्राम है इतना अच्छा हुआ। और मंचा सिंह, जितने सीनियर ऑफिसर्स शुक्ला दीदी अशोक राव भाई हैं, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को इतनी ऊंची धारणा दी है कि कैसे अपने जीवन में इस 3 दिन के दौरान मैक्सिमम जो बेनिफिट है अपने आप में लें, तो उनके लिए हमारी धन्यवाद। सती भाई और शिव भाई पूरी अथक सेवाधारी हैं और कंटिन्यूअसली इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए काम कर रहे हैं। दीपा दीदी ने इतना अच्छा हमको अनुभव कराया ये मेडिटेशन का, और बैक स्टेज साउंड लाइट फोटोग्राफ काफी लोगों का योगदान है, तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और फाइनली आप सब जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं और जगह जगह से आए हैं, उनके लिए भी हार्दिक मेरा शुभकामनाएं हैं। और इसके साथ ही हम शेष करते हैं और इसके नेक्स्ट प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू सर। कार्यक्रम के अंत में मैं आदरणीय शुक्ला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे विशेष जो मेहमान आए हैं उनका स्वागत शॉल से करें, उनका सम्मान शॉल से करें। तो आदरणीय शुक्ला दीदी से सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट श्री अजय कश्यप आईपीएस डीजी होमगार्ड्स, उनका सम्मान शॉल से करें। और साथ में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से प्रसाद, जिसे हम टोली और लिटरेचर भी हमें सौगात में दें। इसके बाद हमारे बीच में श्री पी के अग्रवाल एडीजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आदरणीय दीदी से रिक्वेस्ट है कि उनका भी स्वागत, उनका भी सम्मान करें शॉल पहनाकर। और अंत में हमारे विशेष माउंट आबू से ही हमारे आईजी एंड डायरेक्टर आई से सीआरपीएफ से आप पधारे श्री के एस भंडारी, उनका भी सम्मान करें।
ओम शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी पूरे देश में मनाई जा रही है, तो आदरणीय शुक्ला दीदी का सुख भावना थी, सुख संकल्प थे कि हम दो बच्चों को बुला के उस ड्रेस में, श्री कृष्ण और राधा के ड्रेस में, एक गीत के साथ इस त्यौहार का भी आनंद लें। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चे मंच पे आए, अपना स्थान लें और गीत एक बजा के हम इस त्यौहार का भी आनंद लेंगे। साथ ही साथ सभी जेसीओ से निवेदन है कि वो इस गीत के बाद प्रस्थान कर सकते हैं भोजन के लिए, और ऑफिसर्स को सभी को सौगात भी मिलेगी और प्रसाद भी मिलेगा। तो हम विधिवत एक लाइन से इस दर से आगे से गुजरेंगे और हमारी शुक्ला दीदी हमें आज के इस कार्यक्रम के तुरंत बाद ऑल ऑफिसर्स को और फैमिलीज को प्रसाद और गिफ्ट देंगे। जेसीओ सब भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे आफ्टर दिस सॉन्ग। थैंक यू। जय।
बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।